मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 12 मार्च 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने अक्षर मंत्र की सिद्धि के बारे में आप सबसे कुछ बातें की थी और इनफैक्ट सच पूछिए तो वह बात लगभग पूरी भी हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसमें थोड़े से एडिशंस मुझे करने चाहिए और वह उसके व्यावहारिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। दरअसल देखिए, जब हम किसी भी अक्षर को मंत्र की तरह मान लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव हमारी चेतना पर क्या होता है? हमारी चेतना पर प्रभाव यह होता है कि हम अक्षर का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करने की नीति अपनाने लगते हैं। अक्षर जिसका कभी क्षरण नहीं होता और अक्षर जो मंत्र की ताकत रखते हैं। मंत्र की ताकत रखने का यही मतलब है कि उसका दूसरों पर कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, और केवल दूसरों पर ही नहीं पड़ता बल्कि हम खुद पर भी पड़ता है। जब भी आप किसी से कोई कटु बात कहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आप राहत महसूस कर लें, लेकिन बाद में आप पछताते हैं, और अगर पछताते नहीं भी हैं तो भविष्य में पता नहीं कब कहां उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए। तो दोस्तों, यहां जो सबसे बड़ी बात इसके माध्यम से जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वह यह कि हमें अपनी भाषा को बहुत ही संयमित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही संयमित तरीके से। हाँ, यदि आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा कह रहे हैं, कोई सकारात्मक बात कह रहे हैं, तब भले ही आप सतर्कता न बरतें, क्योंकि जब आप अच्छी बात कहेंगे तो अगर वो झूठ भी होगी तो आपका कोई बुरा नहीं होगा, यानी कि वो बूमरेंग की तरह ऐसा तीर नहीं है जो लौट कर आपके पास आएगा और हो सकता है कि आप पर ही अटैक करे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप अच्छी बात कह रहे हैं, हो सकता है कि सामने वाले को लगे कि ये मक्खन पालिश कर रहा है, ये चापलूसी कर रहा है, तो वो आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। लेकिन जब भी ऐसी स्थिति आए कि आप किसी की आलोचना कर रहे हैं, किसी को किसी चीज के बारे में गलत ठहरा रहे हैं, किसी के आप ये कह रहे हैं कि तुमने यह बात सही नहीं कही है, या कुछ कटु बात कहने का मन में बिल्कुल एकदम उद्वेलन सा हो रहा है, तो कंट्रोल योर सेल्फ। आपको चाहिए कि आप उस समय अपने आप को नियंत्रित करें, और नियंत्रित करना ही चाहिए। अगर आप उस समय इस रूप में अपने को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं कि बिल्कुल आप बोलने के लिए बेताब हैं, तो एक काम तो आप कर ही सकते हैं, और वो ये है कि थोड़ी देर के लिए आप वहां से दूर चले जाइए। आप मौन नहीं रह पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप सच में यह नीति अपना सकते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए यहां से हट जाता हूं? आप उसे थोड़ा सा अवसर दे दीजिए। थोड़ा सा जैसे ही आप अवसर देंगे तो आपके अंदर जो बाढ़ आई हुई है उस बाढ़ का आवेग कम हो जाएगा। भले ही आप बाद में पछताते रहें, आपको थोड़ा सा भारीपन भी महसूस हो सकता है, आपको लगे कि यार मैं बोल देता तो हल्का हो जाता, लेकिन मित्रों यही तो संयम है और यही सिद्धि है। सिद्धि क्या है? सिद्धि का मतलब आपको तपस्या करना पड़ता है। तो अपने शब्दों को, कटु शब्दों को अपने अंदर बर्दाश्त करने की आदत डालना ही मंत्र सिद्धि है। तब आप देखेंगे कि धीरे 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 शुरू में आपको बहुत भारीपन महसूस होगा, लेकिन धीरे 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 आप उबर जाएंगे। और मुझे लगता है कि इस साधना को अपने जीवन में हम जितनी जल्दी करना शुरू कर देंगे, हमारा जीवन उतना ही जल्दी और उतना ही ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मंत्र सिद्धि के जरिए हम अपने जीवन के लिए जो मैसेज ले सकते हैं वो केवल यही कि भाषा के मामले में हम सबको जितना संभव हो सके उतना संयम बरतना चाहिए। यही है अक्षर मंत्र और यही है मंत्र सिद्धि। दोस्तों, अब मैं विदुर जी की दूसरी बात पर आता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था नास्ति मूलम अनौषधम, यानी कि कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जिसमें औषधि की शक्ति न हो। देखिए, उन्होंने जड़ की बात कही है, लेकिन यहां सिर्फ संबंध सिर्फ जड़ से ही नहीं है, है ना। वृक्ष का एक भाग होता है रूट, जिसे आप जड़ कहते हैं, लेकिन उसका पीड़ भी है, उसकी डालें भी हैं, उसकी पत्तियां भी हैं, उसकी डंडियां भी हैं, उसके फूल भी हैं, उसके फल भी हैं, उसकी ढेर सारी चीजें हैं। यानी कि भले ही वो जड़ कह रहे हैं तो पूरी वनस्पति को आप मान करके चलिए, और हर तरह की वनस्पति को, उसमें घास फूस दूब से लेकर के बड़े बड़े पेड़ तक, संजीवनी बूटी से लेकर के आप जिसको भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि इस धरती पर जितनी भी वनस्पतियां हैं वे व्यर्थ नहीं है। और औषधि शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए, व्यर्थ नहीं है से केवल अर्थ नहीं है, औषधि है। यानी कि प्रत्येक वनस्पति में इस बात की क्षमता है कि वह हमारा हित साधन कर सके, वह हमारा कल्याण कर सके। यह बहुत बड़ी बात है। यहां औषधि शब्द का उन्होंने उपयोग किया है, वहां मंत्र शब्द का उपयोग किया, मतलब मंत्र जो हमारे लिए सकारात्मक रोल प्ले कर सकता है, और यहां औषधि शब्द का प्रयोग किया है कि औषधि भी हमारे जीवन में सकारात्मक रोल प्ले करती है, यानी कि वो हमारे विकारों को दूर करने में हमारी मदद करती है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूंगा, छोटी सी कथा जो चरक के बारे में है। चरक के बारे में आप जानते हैं, जो चरक संहिता, जिन जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, चरक साहब मतलब ऋषि, महान ऋषियों में से एक है चरक। चरक आयुर्वेद के आचार्य थे और बकायदे जो अपने उनके स्टूडेंट होते थे उनको आयुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। यूं कह लीजिए कि उनका जो मेडिकल कॉलेज था वहां वो MBBS और MD की डिग्रियां दिया करते थे। तो ठीक है, शिष्यों की पढ़ाई पूरी हो गई और अंतिम परीक्षा बाकी थी। अंतिम परीक्षा, आप यूं कह लीजिए कि बस इंटरव्यू होना था और इसके बाद उनको डिग्रियां दे दी जाती। तो चरक साहब ने एक फैसला किया, उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट से कहा कि ऐसा है कि तुम लोग सूर्योदय के साथ ही जंगल में चले जाओ, भटकते रहो, जहां भी जाना है जाते रहो, और सूर्यास्त होते होते लौट आओ। ये तुम्हारा टाइम पीरियड है, पेपर का ये ड्यूरेशन हो गया। और तुम सब कोई भी ऐसी वनस्पति ढूंढ करके लाओ, ऐसा वेजिटेशन जिसका कोई उपयोग ना होता हो, मैंने तो तुमको सब पढ़ाई दिया है, तो जाओ और अब तुम ये परीक्षा दो। तो दोस्तों, सब स्टूडेंट अपना भटकते रहे, जाते रहे, लाते रहे, और सब सूर्यास्त से पहले पहले अपने गुरुदेव के आश्रम में पहुंच गए और सब ने अपनी अपनी वनस्पतियां दे दी। कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, और चरक साहब उन सबको देख रहे हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। उसमें एकमात्र स्टूडेंट ऐसा था जो खाली हाथ आया हुआ था। वो एक तरफ खड़ा था क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं, और वो बड़ा अचंभित भी था कि सब तो इतना इतना लेकर के आ गए, सबको कुछ न कुछ मिल गया और मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, तो मेरा अब क्या होगा। तो चरक साहब ने उसको बुलाया, और साहब मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई तुम कुछ भी लेकर के नहीं आए, तुमको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो व्यर्थ हो, कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं मिली। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि नहीं आचार्य, मुझे कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं मिली जिसे मैं ये मानकर चलता कि इसका उपयोग नहीं हो सकता है। और अब आप समझ गए होंगे कि चरक साहब ने किसको टॉपर घोषित किया होगा, या यूं कह लीजिए कि किसके हाथ में डिग्री थमाई होगी। जाहिर है कि जो कुछ भी लेकर नहीं आया था, जो खाली हाथ आया था, वही उनके आश्रम से डिग्री लेकर लौटा। तो दोस्तों, यहां भी जो चरक कहना चाह रहे हैं इस कथा के जरिए, या ये कुलियो कह लीजिए कि ये कथा जो कह रही है, वो यही कह रही है कि कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जिसमें औषधि बनने की शक्ति ना हो। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, कल फिर बातें करेंगे। मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।